समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात। कार्यक्रम आज सवेरे में आप सभी को फरहत नाज का नमस्कार। आज 4 दिसंबर है और आखिरी महीने का चौथा दिन भी, जो धीरे धीरे हमें अलविदा कह रहा है। एक शायर का बहुत ही खूबसूरत सा शेर है, पुराने साल की ठिठुरी हुई परछाइयां सिमटी, नए दिन का नया सूरज उफक पर उठता आता है। यानी हम सब पुरानी यादों को समेटे हुए नए साल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आने वाला साल और वक्त दोनों और बेहतर होगा। इसी उम्मीद के साथ आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आज सवेरे की। आज मेरे साथ है मेरी सहयोगी नीना। नमस्कार नीना।
नमस्कार। व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट टू स्टार्ट द डे विद फरहत
जी।
हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। यू आर लिसनिंग टू आज सवेरे, आवर एक्साइटिंग डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम। ओवर द नेक्स्ट हाफ आवर वील ब्रिंग यू द लेटेस्ट फ्रॉम नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, अपडेट्स फ्रॉम मेट्रो सिटीज एंड फैसिनेटिंग हिस्टोरिकल टिडबिट्स अबाउट दिस डे, द 4th ऑफ दिसंबर।
जी बिल्कुल नीना, और आज भारतीय वायुसेना दिवस भी है तो उस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मुख्य समाचारों से। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए नव निर्वाचित विधायकों की आज मुंबई में बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को बैठक के लिए पर्यवेक्षक बनाया है। नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कल शाम 5 बजे दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवसर पर उपस्थित रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की दौड़ में आगे माना जा रहा है। भाजपा के नेतृत्व में महायुति गठबंधन ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की थी।
The Indian Space Research Organisation ISRO will launch the PSLV C-59 Proba 3 mission at 4:08 p.m. today from the Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota. PSLV C-59 will launch Proba 3 satellites of the European Space Agency into the highly elliptical orbit. The commercial arm of ISRO, namely New Space India Limited, has got this order from European Space Agency. The satellites will study the sun's corona, its surrounding atmosphere, space weather and solar wind.
और नीना, आज जैसा कि हमने बताया कि भारतीय नौसेना दिवस है, लेकिन इसके इतिहास के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इसके कार्यक्रम के बारे में हम बता देते हैं कि इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पुरी में ब्लू फ्लैग बीच पर भारतीय नौसेना दिवस समारोह और कई अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति 5 दिन के दौरे पर कल शाम अपने गृह राज्य ओडिशा पहुंची। भुवनेश्वर पहुंचने पर राज्यपाल रघुवर दास, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों ने उनका स्वागत किया। वहीं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दर बदलाव के बारे में मंत्री समूह की अनुशंसा संबंधी रिपोर्ट खारिज कर दी है। बोर्ड ने कहा है कि जीएसटी परिषद को मंत्री समूह की ऐसी कोई सिफारिश नहीं मिली है और न ही जीएसटी दर में बदलाव पर विचार किया गया है। बोर्ड ने कहा कि वित्त मंत्री तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ही दरों में बदलाव की सिफारिश कर सकती है। वहीं मंत्री समूह में बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल के मंत्री भी शामिल हैं। बिहार के मुख्यमंत्री इसके संयोजक हैं।
UK MPs have raised concern over ethnic cleansing of Hindus in Bangladesh. An urgent issue was tabled in the House of Commons in UK's Parliament over the worrisome situation in Bangladesh. Conservative MP Preeti Patel called the situation in Bangladesh deeply concerning, referring to the surge in incidents of violence, vandalism and desecration targeting Hindu minorities. Ms. Patel said the country is witnessing uncontrolled violence in many quarters. Another MP, Bob Blackman, said Hindus are suffering with their houses being burnt and their businesses ransacked. He said this is a clear issue of an attempt at the ethnic cleansing of Hindus from Bangladesh. Labour Party MP Barry Gardiner has asked for an urgent session in the British Parliament to discuss the situation in Bangladesh. Informing the House about initiatives taken by Britain so far, the Foreign Office in charge for the Indo-Pacific Indo-Pacific region, Catherine West, said that UK is among the first countries to take up this issue with Dhaka. Ms. West also said that the UK Foreign Commonwealth and Development Office, FCDO, is closely monitoring those developments.
Jinina aur wahin Britain ne Bangladesh mein aatanki hamlo ki aashanka ko dekhte hue naya yatra paramarsh jari kiya hai. Britain ke videsh rashtramandal aur vikas karyalay ne ek chetavni mein kaha hai ki videshi nagrikon ke bhraman sthalon sahit भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, धार्मिक स्थलों और राजनीतिक रैलियों पर आतंकी हमले हो सकते हैं। परामर्श में यह भी कहा गया है कि बांग्लादेश में कुछ कट्टरपंथी समूह इस्लामी विचारधारा से अलग मत रखने वालों को निशाना बना रहे हैं। वहां अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों पर आतंकी हमले हुए हैं तथा पुलिस और सुरक्षा बलों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ब्रिटेन ने जुलाई और अगस्त में भी बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति के बारे में कहा था कि वहां पर व्यापक हिंसा हुई है जिसमें कई लोगों की मौत हुई और अनेक घायल हुए हैं।
South Korean President Yoon Suk-yeol has announced the lifting of emergency martial law after the National Assembly voted to end it following fierce backlash from the lawmakers across the political spectrum. His cabinet approved a motion to terminate martial law approximately 6 hours after the surprise emergency declaration. The Joint Chiefs of Staff confirmed that troops mobilized to enforce martial law have returned to their bases, restoring a sense of normalcy. Park Chan-dae, the floor leader of South Korea's opposition Democratic Party, demanded that President Yoon step down immediately over his declaration of martial law, accusing him of treason. In an earlier late-night television address, President Yoon had described the measure as necessary to safeguard the nation from North Korea's communist forces and to eliminate anti-state elements.
और अगर बात की जाए खेलों की तो ओमान के मस्कट में जूनियर एशिया कप हॉकी में वर्तमान चैंपियन भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत की ओर से दिलराज सिंह, रोहित और शारदानंद तिवारी ने गोल किए। आज फाइनल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान के साथ होगा। पाकिस्तान ने पहले सेमीफाइनल में जापान को 4-2 से हराया है।
In Namibia, Nontumbo Nandi Ndaitwah of the ruling Southwest Africa People's Organization Party has won the country's 8th presidential election, becoming its first female president. The Electoral Commission announced that she secured more than 57% of the votes, while her closest rival, Pradyulena Itula, garnered 26%.
तो अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार और अब रुख कर लेते हैं महानगरों का। तो नीना क्या है आपके पास चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में?
यस फरत, न्यूज फ्रॉम चेन्नई। द तमिलनाडु साइबर क्राइम विंग पुलिस हैव इनवाइटेड स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स टू पार्टिसिपेट इन अ हैकाथॉन टू बी हेल्ड एट पनीमलार इंजीनियरिंग कॉलेज इन पुनमली ऑन 5th of February नेक्स्ट ईयर। द इवेंट एम्स एट आइडेंटिफाइंग पार्टिसिपेंट्स स्किल सेट्स इन द साइबर डोमेन। द हैकाथॉन विल बी हेल्ड इन 5 कैटेगरीज: डार्क आई, इंटेलिजेंट सर्वेलेंस सिस्टम फॉर डार्क वेब, टोर अनवील, डी एनोनिमाइजिंग Tor mail for investigation, VOIP crack, VOIP call interception and analysis, Telegram Sentinel monitor and analyze Telegram channels and ad shield, social media targeted advertisement identification and analysis for cyber scams. The first prize winner in each category will receive 1 lakh rupees, while the second and third prize winners will receive 75,000 and 50,000 rupees respectively. Hyundai Motor Group has partnered with 3 IITs to establish a collaborative research system in the field of batteries and electrification. IIT Madras, IIT Delhi and IIT Bombay are the institutes which are partnering. The Hyundai Center of Excellence, which will be set up on IIT Delhi campus, will operate through sponsorship from Hyundai Motor Group. The primary objective of the Hyundai Center of Excellence is to take lead in driving advancements in batteries and electrification specifically designed to meet the unique requirements of the Indian market. Some more from Chennai. Nissan Motor India has crossed 5 lakh units in cumulative domestic sales since its inception in 2010. It has sold more than 5 lakh units in the last 14 years. The company recorded consolidated wholesale dispatches of 9,000 40 units, with domestic sales accounting for 2,342 units. Exports stood at 6,698 units. Saurabh Vatsa, Nissan Motor India, said that Nissan recently expanded the product lineup with the launch of the new Nissan Magnite. Now, some more news from Bengaluru. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah reviewed the financial performances of various departments in Bengaluru yesterday. Speaking to media, Siddaramaiah informed that the Commercial Taxes Department has reported revenue collection of 53,103 crore rupees by November end, as against the target of 56,317 crore rupees. The GST collection grew by 15%, contributing a sum of 13,722 crore rupees, making Karnataka the second state in the country in GST collections. The excise department collected over 23,000 crore rupees, as against the yearly target of 38,525 crore rupees in this financial year. The stamps and registration department recorded revenues of over 15,000 crore rupees, as against its annual target of 26,000 crore rupees. The Mines and Geology Department earned revenue of 4,862 crore rupees, as against its target of 9,000 crore rupees up to November this year. The Karnataka Minister for Minor Irrigation, Science and Technology, N.S. Bosraju, has directed the officials to prepare a draft proposal to revive the lake users' associations. He informed that a high-level meeting of the Karnataka Lake Conservation and Development Authority will be convened under the chairmanship of Chief Minister Siddaramaiah to discuss ways to revive lake users' associations for 40,000 water bodies across the state. The minister told the officials to improve interdepartmental coordination to address water conservation challenges and encourage revenue earning activities such as fishing, installing floating solar panels, and introducing boating to support water body management efforts. Farhat, now we move on to Hyderabad.
Ji, Neena, bilkul.
On the occasion of completion of 1 year of Congress government, Chief Minister A. Revanth Reddy virtually launched a slew of development works worth 5,827 crore rupees in Hyderabad yesterday. The Chief Minister laid the foundation stone for development works worth 3,446 crore rupees under HCITI Phase 1 in Greater Hyderabad Municipal Corporation limits. He also launched works for rainwater conservation and flood control works to prevent flood water from stagnation in the city and inaugurated sewage treatment plants. He also inaugurated 19 reservoirs in various areas around the outer ring road for drinking water supply, among other works. Chief Minister A. Revanth Reddy also formally launched the new online building approval and layout approval software Built Now with artificial intelligence integration. The system will come into effect from February 2025. And now, Farhat, over to you for some more metro updates.
Ji, bilkul, Neena. Chennai, Bangalore aur Hyderabad se judi khabron ke baad ab ruk kar lete hain Delhi, Mumbai aur Kolkata ka. Waise dekha jaye to har bachche khaas hote hain, lekin baat agar divyang bachchon ki aaye to unhe aur khaas banane ke liye har pehal ki jati hai taki samaj mein badh chadkar wo bhi hissa le sake. Neena, to Sanskriti Mantralay ne ek pehal ki hai, isme kal Nayi Delhi mein divyang bachchon ke liye srijan kala aur shilp karyashala ka teesra sanskaran aayojit kiya gaya. Ye karyakram Special Olympic भारत और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के सहयोग से आयोजित किया गया. दिव्यांगों के लिए इस दिन अपनी प्रतिभा और कौशल दिखाने के लिए विभिन्न गतिविधियां और कार्यशालाएं भी आयोजित की गई. कार्यशाला में बच्चों ने कैनवास पर अपने कौशल का खूबसूरती से प्रदर्शन किया. वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कल 1600 से ज्यादा होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस वॉलंटियरों को नियुक्ति पत्र वितरित किए. श्री सक्सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बताया कि नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों में से 181 उम्मीदवार महिलाएं और 19% पूर्व नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक हैं. उन्होंने नई भर्तियों के चयन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि चयनित उम्मीदवारों को उनके कर्तव्यों के लिए तैनात किए जाने से पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा. उन्होंने ये भी विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में और अधिक होमगार्ड नियुक्त किए जाएंगे. वहीं अब महाराष्ट्र का रुख करें तो आज नौसेना दिवस उत्सव के हिस्से के रूप में मुंबई में आज अन्य समुद्री गतिविधियों के साथ साथ एक रोमांचक एयर शो का आयोजन किया जा रहा है। समापन समारोह आज शाम 4 बजे से गेटवे ऑफ इंडिया पर होगा। मुंबई में कल उद्घाटन भाषण में वाइस एडमिरल संजय जयसिंह ने संचालन क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा को बनाए रखने और सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पश्चिमी नौसेना कमान WNC द्वारा जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों की व्यापक तैनाती पर प्रकाश डाला। वहीं मध्य रेलवे ने कहा है कि अधिकारियों ने हमेशा दिव्यांगजन यात्रियों के लिए विश्वसनीय, कुशल और सुलभ सेवा सुनिश्चित करने के लिए सुविधाओं में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा कि मध्य रेलवे का उद्देश्य दिव्यांगजनों के अनुकूल व्यापक बुनियादी ढांचा बनाना है। मध्य रेलवे ने बताया कि इस योजना के हिस्से के रूप में कई कार्य पहले भी किए जा चुके हैं, जिसमें व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं और गतिशीलता संबंधी अक्षमताओं वाले यात्रियों के लिए आसान आवागमन की सुविधा के लिए प्रमुख स्टेशनों पर रैंप और रेलिंग लगाना शामिल है। दिव्यांग यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए शौचालय और पीने के पानी के बूथ और स्टेशन के प्रवेश द्वार के पास आरक्षित पार्किंग स्थान प्रदान किए गए। दृष्टिबाधित यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्टेशनों पर ब्रेल साइनेज भी प्रदान किए गए, जबकि ऐसे यात्रियों को स्टेशनों पर सुरक्षित रूप से नेविगेट करने में सहायता के लिए स्पर्शनीय पथ भी प्रदान किए गए हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। महोत्सव का उद्घाटन आज शाम को होगा और ये 11 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 29 देशों के 175 फिल्में दिखाई जाएंगी। फ्रांस इस बार का मुख्य आकर्षक होगा। फ्रांस की फिल्मों पर खास ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन आज कोलकाता के अलीपुर स्थित धोनो धनी ऑडिटोरियम में होगा। उद्घाटन फिल्म तपन सिन्हा की फिल्म गैल्पो हुलेरो सत्ती से होगी। इस अवसर पर अभिनेता और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली मौजूद रहेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समारोह की अध्यक्षता करेंगी। पाब्लो जस्टिनो सीजर भी विशेष अतिथि होंगे। महानगरों की खबरों के बाद अब रुख कर लेते हैं मौसम का। तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की। आज हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश की भी संभावना व्यक्त की गई है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता की बात की जाए तो वहां पर भी आज बादल छाए रहेंगे और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तो नीना, ये तो थी बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की। कैसा रहेगा चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में मौसम?
Yes, Farhat, here's the weather updates. Chennai is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 24 degrees Celsius and maximum will be around 32 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum will be around 27 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with light rain or drizzle. The temperature will hover between a minimum of 22 degrees and a maximum of 29 degrees Celsius.
और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं। आज 4 दिसंबर 2024 है, तो नीना क्या है आपके पास इतिहास में सबसे पहले?
In 1796, श्रीमंत पेशवा बाजी राव II became the second Peshwa. In 1959, power project was signed between India and Nepal, an agreement on the Gandak irrigation.
जी नीना, और अगर बात की जाए 1924 की, तो आज ही के दिन गेटवे ऑफ इंडिया का उद्घाटन हुआ था। इसका निर्माण ब्रिटेन के राजा जॉर्ज V और क्वीन मैरी की भारत यात्रा को यादगार बनाने के लिए किया गया था और उन्होंने यहीं से भारत में प्रवेश किया था। वहीं 31 मार्च 1911 को इसे बनाने का काम शुरू हुआ। 26 मीटर ऊंचे इस गेट को जॉर्ज विटेट ने डिजाइन किया। 13 साल में गेटवे पूरी तरह बनकर तैयार हो गया और आज ही के दिन इसका उद्घाटन किया गया।
Yes, I believe, Farhat, it's truly remarkable blend of national identity and scientific achievement. In 1982, Asian Games at Delhi concluded. And in 1991, Lok Sabha approves a vital bill seeking to bring Sikh public sector units within the purview of the Board for Industrial and Financial Reconstruction.
जी नहीं ना, और जैसा कि हम शुरुआत से ही बात करते हुए आ रहे हैं कि आज भारतीय नौसेना दिवस है, तो आइए थोड़ा सा इसके इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। ये 1971 की जंग में भारतीय नौसेना की पाकिस्तानी नौसेना पर जीत की याद में मनाया जाता है। 3 दिसंबर को भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में पाक सेना के खिलाफ जंग की शुरुआत कर चुकी थी। वहीं ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने कराची नौसैनिक अड्डे पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में पहली बार जहाज पर मार करने वाली एंटीशिप मिसाइल से हमला किया गया। नौसेना ने पाकिस्तान के 3 जहाज नष्ट कर दिए। इसमें भारतीय नौसेना का INS खुकरी भी पानी में डूब गया था। इसमें 18 अधिकारियों सहित लगभग 176 नौसैनिक सवार थे, लेकिन जीत हुई भारतीय नौसेना की।
Yes, the theme for Navy this year is strength and capability through innovation and indigenization. This theme highlights the Navy's goal to improve technology and become self-reliant.
जी, और आगे बढ़े नीना, तो सन 2008 की बात कर लेते हैं। इतिहासकार रोमिला थापर को क्लोज सम्मान के लिए आज ही के दिन चुना गया था।
And in 1998, Ilaiyaraja music composer selected for the Lata Mangeshkar Award instituted by the Madhya Pradesh government.
और इतिहास के बाद अब कुछ मशहूर हस्तियों को याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं तमिल सिनेमा में उत्कृष्ट संगीतकार घंटासला वेंकटेश्वर राव की। वे संयुक्त राष्ट्र शांति पदक प्राप्त करता रहे, पद्मश्री भी रहे। विजेता थिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के पहले आस्थान विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी थे। संगीत उद्योग में उनका योगदान और प्रभाव असंख्य है, जो आज भी युवा कलाकारों को प्रेरित करता है। अपने छोटे जीवन काल के बावजूद घंटासला वेंकटेश्वर राव ने कई भाषाओं में 25,000 से अधिक गाने गाए और कई सदाबहार हिट फिल्में दी। भारत सरकार ने सन 2003 में घंटासला वेंकटेश्वर राव को स्मारक डाक टिकट भी जारी किया।
तो आइए, नहीं जानते कि मैं कौन हूं, क्या हूं और क्यों हूं।
नीना, तकनीकी खराबी की वजह से हम ये गाना नहीं सुन पाए, तो एक बार दोबारा से सुन लेते हैं इनका ये गीत, तमिल सॉन्ग।
अरे 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 తమిళని తెలుసుకున్నది, అదే నీ వయసులోన ఉన్నది, అదే వింత నేను తెలుసుకున్నది, అదే నీ వయసులోన ఉన్నది, ఈ నటతలోన రాజహంసాది గురున్నది, ఈ నవ్వులోన సన్నజాతి పువ్వులున్నవి, నీ నటతలోన రాజహంసాది।
Stonewall Jackson, an American country music singer, died on December 4, 2021 at the age of 89. His breakthrough came in the country top 40 in late 1958 with a song written by young George Jones, Life to Go. It peaked at number 2 in early 1959, and his follow-up record Waterloo was number 1 for 5 weeks and crossed over into the top 40 of the Billboard Hot 100 chart, where it reached number 4. Waterloo was a number 1 hit for country singer Stonewall Jackson. Here's the song just for you.
और आज ही के दिन जन्म हुआ था हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता मोतीलाल का। मोतीलाल ने अपने जादू से नायक और चरित्र अभिनेता के रूप में 2 दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। उन्होंने हिंदी फिल्मों को मेलोड्रामाई संवाद, अदायगी और अदाकारी की तंग गलियों से निकालकर खुले मैदान की ताजी हवा में खड़ा किया। मोतीलाल की अदाकारी के अनेक पहलू हैं। कॉमेडी रोल से वे दर्शकों को गुदगुदाते थे, तो दोस्त और गजरे जैसी फिल्मों में अपनी संजीदा अदाकारी से लोगों की आंखों में आंसू भी भर देते थे। 1961 में उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार से भी नवाजा गया।
आप लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्यों हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैं थर्ड क्लास पैसेंजर हूँ। जी नहीं, मैं चाहूँ तो फर्स्ट क्लास में सफर कर सकता हूँ, सैलून में भी सफर कर सकता हूँ, लेकिन चाहता नहीं। पूछिए क्यों। मैं ये जानना चाहता हूँ कि थर्ड क्लास के पैसेंजरों को क्या क्या तकलीफें हैं, उनको किन किन सहूलियतों की जरूरत है।
जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या, सब सच है।
Today, Tyra Lynn Banks celebrates her birthday. She's an American model, television personality, producer, writer and actress. Banks was one of the only few black models to achieve supermodel status, and by early 2000, Banks was one of the world's top earning models. She acted in films like Higher Learning, Disney Channel's Life Size, Gossip Girl, Glee, Love and Basketball and many more. In 2003, she created the long-running reality television series America's Next Top Model. She was the host of America's Got Talent, Dancing with the Stars, and her own television talk show, The Tyra Banks Show. Sean Corey Carter, known professionally as Jay-Z, is regarded as one of the greatest rappers of all time, celebrating his birthday today. Born and raised in New York City, Jay-Z first began his musical career after founding the record label Rockefeller Records in 1995 and subsequently released his debut studio album Reasonable Doubt in 1996. He has won 22 Grammy Awards, the most by a rapper, and holds the record for the most number one albums by a solo artist on the Billboard 200 with 14. He has been ranked by Billboard and fellow music publication Rolling Stone as one of the 100 greatest artists of all times. Young Forever is a song by American rapper Jay-Z released in early 2010 as the fifth single from his 2009 album. Here's a song for you.
Young, I wanna be. Hey, may the best of your todays be the worst of your tomorrows. We ain't even thinking that far. You know what I mean? So we living life like a video. Where the sun is always out and you never get old, and the champagne's always cold and the music's always good, and the pretty girls just happen to stop by in the hood, and they hop their pretty ass up on the hood of that pretty ass car without a ring.
और आज हिंदी सिनेमा जगत के प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक शशि कपूर का जन्मदिन है। वे ऐसे अभिनेताओं में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने अपने सदाबहार अभिनय से लगभग चार दशक तक हिंदी सिने प्रेमियों का भरपूर मनोरंजन किया। कोलकाता में जन्मे शशि कपूर का असली नाम बलबीर राज कपूर था। उनका रुझान बचपन से ही फिल्मों की ओर और अभिनेता बनना चाहते थे। साल 1965 में शशि कपूर के सिने करियर का अहम साल साबित हुआ। इस साल उनकी जब जब फूल खिले प्रदर्शित हुई। बेहतरीन गीत संगीत और अभिनय से सजी इस फिल्म की जबरदस्त कामयाबी ने न सिर्फ अभिनेत्री नंदा को बल्कि गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। कल्याण जी और आनंद जी के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी रचित सुपरहिट गाना परदेसियों से ना अखियां मिलाना श्रोताओं के बीच काफी लोकप्रिय हुआ।
परदेसियों से न अखियां मिलाना, आती है जब ये रुत मस्ताने, आती है जब ये रुत मस्ताने, बनती है कोई ना कोई कहानी, बनती है कोई।
शशि कपूर ने लगभग 200 फिल्मों में काम किया। उनके करियर की कुछ अन्य फिल्में प्यार किए जा, हसीना, मान जाएंगी, प्यार का मौसम, कन्यादान, अभिनेत्री, शर्मीली, वचन, चोर मचाए शोर, फकीरा, हीरालाल पन्नालाल रही और सत्यम शिवम सुंदरम भी उनकी फिल्म काफी लोकप्रिय हुई। तो आइए सुन लेते हैं उन्हीं की फिल्म से ये मेडली।
लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके। लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, दूध में बताशा बुन्नी करे।
Today is also the birth anniversary of Kim Seok-jin, known professionally as Jin, who is a South Korean singer, songwriter and member of the South Korean boy band BTS. Here's the song Moon, beautifully sung by Jin, all about self-love.
और इसके साथ ही घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमें कहना होगा आपसे अलविदा.
Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 p.m. Thanks for tuning in. Have a superb day.
Namaskar.